नमस्कार, ब्रह्म कुमारीज की फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव और सोशल मीडिया स्ट्रीम्स पर ब्रह्म कुमारीज की विशेष प्रस्तुति जो ब्रह्म कुमारीज के मुख्यालय से हम आपके साथ ले आए हैं। हर दिन हम इस बदलते हुए वक्त में अपने आप को बदलने के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, और अच्छी बात तो ये है कि आप सभी दोस्त हमसे सीधे लाइव जुड़ पाते हैं। इस प्रोग्राम में आप सीधे हमसे अपने सवाल पूछते हैं, अपनी बातें रखते हैं, और मैं एज ए मॉडरेटर आप सबके सवालों को हमारे एक्सपर्ट्स तक ले जा सकता हूं। और इस बात की मुझे बेहद खुशी है कि मैं आप दोनों लोगों के बीच में एक ब्रिज का काम कर पा रहा हूं। और हर दिन बी द चेंज सीरीज में एक मास्टर ऑफ मेडिटेशन हमारे साथ जुड़ते हैं, जो हमें इस बदलाव के दौर को बेहतर समझने और इस दौर में अपने आप को बदलने के लिए जो हमें गाइडेंस चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए या फिर स्पिरिचुअल विजडम चाहिए, वो ऑफर करते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही मास्टर ऑफ मेडिटेशन जुड़े हैं जिन्होंने अनेकों दशकों से ब्रह्मा कुमारीज की शिक्षाओं के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाया है और हजारों लोगों को उनके मार्गदर्शन में सकारात्मकता की राह में पॉजिटिव चेंज लाने में मदद मिली है। 1992 से ये हमारे मास्टर ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर माउंट आबू में रहकर अपनी सेवाएं दे रही हैं, और ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय में रहते हुए एक वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अनेकों कार्यक्रमों कॉन्फ्रेंसेज में ब्रह्मा कुमारीज के रिप्रेजेंटेशन को करने का इनको मौका मिला है, और सक्षम रूप से एक प्रखर वक्ता के रूप में, एक एक्सपीरियंस्ड योगी के रूप में इन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया है और भक्तों को मार्गदर्शन दिया है। आइए करते हैं उनसे बातचीत। मैं आपसे मुलाकात करवाना चाहता हूँ ब्रह्मा कुमारी सुमन दीदी जी का। दीदी जी, स्वागत है आपका।
ओम शांति, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग।
सुमन बहन, बहुत ये जो समय गुजरा है बहुत सारे लोगों के लिए एक अलग सा अनुभव रहा है। इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, मैं एट द आउटसेट आपसे पूछ लेना चाहता हूं कि आपने इस टाइम को कैसे यूटिलाइज किया, क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर में आप रहते हैं और ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर में बहुत सारे एक्टिविटीज होते रहते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, इवेंट्स होते रहते हैं, लगातार लोगों का आना जाना हो रहा होता है, लोग बेनिफिट्स ले रहे होते हैं इन प्रोग्राम्स में। आपने क्या बदलाव देखा? आपने इस बदलाव के दौर में अपने आप को कैसे पॉजिटिव और मोटिवेटेड रखा है, इसके बारे में जानना चाहेंगे।
माउंट आबू हेडक्वार्टर्स में तो आप जानते ही है, लगातार प्रोग्राम्स एक के बाद एक होते रहते हैं और इतने बिजी रहते हैं हम लोग यहाँ, और जिस कारण से हम लोग इतना फैमिली जो मेंबर्स है यहाँ, जो परमानेंट रेसिडेंट्स है, तो उनके साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, और दूसरी बात है अपने आप के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, या मेडिटेशन के लिए, तपस्या के लिए अपना टाइम नहीं दे पाते हैं। ये जो टाइम अभी चल रहा है, एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हम कह सकते हैं। भले बाहर दुनिया में कुछ हो रहा है, दुख है, अशांति है, ये सब कुछ चल रहा है, हमें भी अफसोस है, लेकिन ये हम लोग पॉजिटिव रूप में जब हम लेते हैं तो हमारे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाता है। तो अभी फिलहाल हम अपने ऊपर, अपनी आंतरिक शक्तियों को या फिर अपनी आत्मा की उन्नति के लिए इतना थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, और दूसरा इसके साथ साथ जो हमारे जो निवासी है, जिस कैंपस में मैं रहती हूँ उसको ज्ञान सरोवर कहा जाता है, तो ज्ञान सरोवर कैंपस में जो हमारे भाई बहने हैं, करीब हम लोग 180 भाई बहने यहाँ परमानेंट रूप में रहते हैं, तो उनके साथ हम टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, और कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हर रोज, हर शाम को कुछ ना कुछ एक्टिविटीज, अनुभव के लेन देन, कुछ ऐसे हम क्रिएटिव करते हैं, जिस कारण से हम फैमिली के रूप में बहुत नजदीक आता हुआ नजर आ रहा है। और साथ साथ हम यहाँ इतना, क्योंकि बाहर से भी लोग नहीं आ रहे हैं और अपने काम करने वाले भी लोग कम हैं, उसके कारण से हमें ही सब कुछ करना पड़ रहा है, सब्जी काटना हो, सफाई हो, तो सब मिलजुल करके जब ये सब कुछ करते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, और एम्पावर्ड भी हम फील कर रहे हैं अभी फिलहाल।
बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि भाई ऐसे भी समय में आप अपने आप को बिजी रख रहे हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं। जिससे एक कम्युनिटी लिविंग का जो एग्जाम्पल है वो भी पता चलता है। और ब्रह्म कुमारीज में अगर बाहर से प्रोग्राम नहीं आ रहे हैं तो भी आप स्पिरिचुअली अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, स्ट्रेंथन रखने के लिए चीजें कर रही हैं। इसी से मिलता जुलता एक सवाल कल हमारे एक दोस्त ने पूछा था जिसको मैं नहीं ले पाया। उन्होंने ये बात पूछी थी कि हम अपने आप को हमेशा स्ट्रेंथन कैसे रखें, क्योंकि कभी कभार दिन अच्छा शुरू होता है, अच्छा दिन बीतता है तो फिर हमें लगता है बहुत सब ठीक चल रहा है, और कभी कभार कोई दिन ऐसा आ जाता है जब हमें लगता है कि भाई हमारे पास तो कोई ताकत ही नहीं है इन चीजों को डील करने की। तो व्यक्ति अपने आप को सशक्त कैसे बनाए, वो हर दिन उसका अच्छा बनाए, क्या वो उसके हाथ में है या वो सिर्फ चलो भाई आज दिन अच्छा बीता है इसके लिए वो थैंकफुल रहे।
सब कुछ अपने ही हाथ में है, अपने जीवन के जो डोर है वो अपने ही हाथ में है, जिस मोड़ जिस दिशा में मोड़ना चाहते हैं हम उस दिशा पर दिशा में मोड़ सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ अवेयरनेस के ऊपर डिपेंड है, स्मृति के ऊपर डिपेंड है, अपने थॉट्स के ऊपर डिपेंड है। तो इसलिए जो भी ऐसे जो परिस्थिति आती है या फिर संस्कारों का टकराव होता है, क्योंकि जब भी कौन सी चीजें तकलीफ मुश्किल लगता है इस समय में, कि मुझे लगता है कि जब लोगों के जो संस्कार है जब वो टकराव में आ जाते हैं तो मुश्किल लगने लगता है। तो इसलिए उस समय अपने आप को ये याद दिलाना बहुत जरूरी है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, क्योंकि आत्मा जो है अपने जो आंतरिक शक्तियां हैं तो वो सबके अंदर है, तो ये केवल अवेयरनेस की जरूरत है। तो इसलिए शास्त्रों में भी कहा जाता है कि हनुमान जी को याद दिलाना पड़ता था उनको उनके अंदर कितनी शक्ति है, बार बार भूल जाते थे। तो ऐसे ही हम भूल जाने के कारण से हमको लगता है कि हम बहुत साधारण हैं या फिर हम निशक्त हैं, हमारे अंदर कैपेबिलिटीज नहीं है, हमारे अंदर शक्तियां नहीं है। लेकिन जब हम स्मृति लाते हैं, अवेयरनेस फिर से हम लाते हैं कि मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा के अंदर ये शक्तियां हैं, सहन करने की भी शक्ति है, सामना करने की भी शक्ति है और शांति की भी शक्ति है, केवल जब हम स्मृति लाते हैं तो उसकी अनुभूति हमारे अंदर होती है। जैसे हम कहते हैं सागर के पास जब जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो ठंडी हवा हमें महसूस होती है, और सागर से 100 किलोमीटर दूरी पर रह करके हम ये कहें हे सागर मुझे ठंडी हवा दो, वो नहीं हो सकता। हमें वहां जाना पड़ता है, पहुंचना पड़ता है और पहुंचते ही बिना मांगे हमें मिल जाता है। ऐसे ही केवल हम स्मृति लाए, अवेयरनेस लाए कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, और ये अवेयरनेस लाने से या परमात्मा की स्मृति लाते हैं, कोई ना कोई पॉजिटिव ऐसे कुछ याद लाए अपने मन के अंदर, तो वो शक्ति हमारे अंदर महसूस हम कर सकते हैं।
जी हमारे एक दोस्त हैं जो ऑलरेडी सवाल पूछ रहे हैं, जो दोस्त हमारे ऑनलाइन हैं और वो सवाल पूछना चाहते हैं तो वो सवाल पूछ सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, यहाँ पर जहां पर भी आप देख रहे हैं, आप यूट्यूब पे देख रहे हैं या फेसबुक पे देख रहे हैं, जिधर भी आप प्रोग्राम देख रहे हो वहां पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, जो भी बात आप शेयर करना चाहें। अगर आपके मन में सवाल नहीं है, आप कोई ऐसी बात हमसे सिर्फ शेयर ही करना चाहते हैं, कोई ख्याल है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं ये शेयर करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। अगर आप कोई शाउट आउट देना चाहते हैं तो प्लीज फील फ्री, आपके सारे कमेंट्स को यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाया जाएगा और आपके क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके हम दीदी जी से पूछेंगे। पहला एक सवाल जो हमारे दोस्त आज पूछ रहे हैं, पमेला नाम है इनका, और वो पूछते हैं ओम शांति दीदी, हाउ टू कन्विंस आवर फैमिली मेंबर्स टू ईट अ हेल्दी सात्विक डाइट बीइंग अ नॉन वेजिटेरियन, Sometimes I fail to make them understand. Kindly help, ma'am, ऐसा कहते हैं। मैं समझता हूँ सिर्फ पैमेला जी का ही ये क्वेश्चन नहीं है, पिछले कई दिनों से जो लॉकडाउन का समय बीता है सुमन दीदी, उसमें ये हुआ है कि बहुत सारे लोग अपने फिटनेस के प्रति, डाइट के प्रति बहुत जागरूक हुए हैं, लोग वेजिटेरियनिज्म, वीगनिज्म पे आए हैं, कुछ लोग हेल्दी डाइट्स खा रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ 2 meals a day कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसा हेल्दी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तो ऐसे में घर वालों को कन्विंस करना कि भाई आप एक हेल्दी सात्विक डाइट लें, उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, स्पेशली क्योंकि आप एक नॉन वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते आए हैं फैमिली मेंबर्स का बड़े टाइम से, तो कहते हैं कि मैं कैसे उनको समझाऊं, कैसे उनको ये बात अंडरस्टैंड करवाई जा सके, वो पूछते हैं पामेला।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पामिला जी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे लोगों का भी है। जब हम स्पिरिचुअल पाथ में चलना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं सात्विक डाइट का महत्व हमें समझ में आता है, तो हम खुद उसको फॉलो करना चाहते हैं और ये भी मोटिवेट करना चाहते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को, ताकि वो भी सात्विक डाइट वो फॉलो करे। तो सबसे पहली बात ये है, हम ये कहते हैं ओटे सो अर्जुन, जब हम लोग करें तो धीरे 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 लोग इंस्पायर करें होंगे और उसको फॉलो करेंगे। कई बार बोलने से वो लोग परिवर्तन नहीं होंगे, ऑफ कोर्स हमें समझाने की जरूरत है, समझाना भी चाहिए, समझाए बिना वो समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए समझाना भी चाहिए और अलग अलग तरीके से भी समझाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ना केवल जो स्पिरिचुअल पाथ में जो है वही सात्विक डाइट या वेजिटेरियन डाइट या वीगन जो डाइट है वो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर अनेक उनके अलावा भी लोग वेजिटेरियनिज्म और वीगन को फॉलो कर रहे हैं, तो वो लॉजिकली वो लोग प्रूव करते हैं उससे लाभ क्या होता है। तो इसीलिए अलग अलग लोगों के जो अनुभव है, आजकल यूट्यूब में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में आ रहा है, तो अलग अलग लोगों के मोटिवेशन क्या है, अलग अलग लोगों की इंस्पिरेशन क्या है, तो वो लोग उन चीजों को हम सेलेक्ट करके उनको दिखा सकते हैं। और एस्पेशली जो सेलिब्रिटीज है, जब सेलिब्रिटीज इसको फॉलो करने लगते हैं तो उनको फॉलो करने में लोगों को आसान लगता है और वो मोटिवेट होते हैं, तो इसीलिए ना केवल बताना है, लेकिन फिर इन लोगों की इंस्पिरेशनल स्टोरीज उनको हम बता सकते हैं। और साथ साथ क्योंकि हम कहते हैं मनसा सेवा भी करने की जरूरत है, हम उस चीज में डेफिनेट रहे, अड़े रहे, डिटरमाइंड रहे कि हमें इस सात्विक डाइट को फॉलो करना है, क्योंकि लगातार हम अगर फॉलो करना शुरू करते हैं और लगातार उसको फॉलो करना शुरू करते हैं तो मे भी कुछ महीने लगते हैं, कुछ साल भी लग सकता है हमारे फैमिली मेंबर्स उससे इंस्पायर होंगे। केवल डाइट चेंज होने से वो इंस्पायर नहीं होंगे, लेकिन हमारे बिहेवियर में अगर चेंजेस आना शुरू हुआ, हमारे पर्सनालिटी में पॉजिटिविटी ज्यादा दिखने लगता है, तो वो फिर फैमिली मेंबर्स का हमारे ऊपर हमारा इम्प्रेशन फैमिली मेंबर्स के ऊपर पॉजिटिव और पावरफुल पड़ने लगता है। तो इसीलिए ये सभी मिश्रण है, कॉम्बिनेशन है, हम खुद फॉलो करना शुरू करें और कुछ पॉजिटिव चेंज हमारे में दिखाई देने जब लगता है, बिहेवियर लेवल में जब दिखाई देने लगता है तो फैमिली मेंबर्स इंस्पायर्ड हो जाते हैं।
जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि भाई सिर्फ हम अच्छा कर रहे हैं इतना भी काफी नहीं है, हमें मोटिवेट भी करते रहना चाहिए, उनको कुछ अच्छी अच्छी चीजें इसके बारे में जानकारी मिलती रहे। अगला प्रश्न हमारे साथ है फेसबुक से, चारु शिखा जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो कहते हैं सहन करने का अर्थ है कि हम सामने वाले से कुछ न कहें, पर जब सामने वाला आपको गलत समझे और कुछ कहने पर लगे तो आप सफाई मत दो, ऐसे में क्या करें? ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, क्योंकि कुछ लोग अभी नए नए स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करने लगे हैं लॉकडाउन के दौरान, और ये होता है कि लोगों को बोला गया है कि टॉलरेट करना एक पावर है, तो हमें लगता है कि चलो हम सुन लेते हैं, बट जब सामने वाला जब हमें देखता है और कभी सही चीज भी हम कहने की कोशिश करते हैं तो लोग कहते हैं कि आप सफाई मत दो, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, सही अंडरस्टैंडिंग क्या हो सहन करने की?
ओके, इस चारू जी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसमें क्लैरिटी की जरूरत है। सहन करने की शक्ति क्या है उसका समझ चाहिए, क्योंकि सहन करना भी एक शक्ति है और सामना करना भी एक शक्ति है, और कौन से शक्ति कब यूज करना है ये भी एक टेक्निक है। लेकिन अब मैं अभी फिलहाल उस पर फोकस ना करके सहन करने की शक्ति क्या है उस पर फोकस करना चाहती हूँ। सहन वो जो पूरा शब्द है सहनशीलता कहते हैं, तो सहन माना ऊपर से भी माना मुख से ना कुछ बोलना पॉजिटिव माना उतना गलत ना बोलना, शीलता माना अंदर भी कूल माइंड भी कूल रखना, इसको सहनशीलता कहते हैं। तो हम पॉजिटिव रूप में जब हम सहन करना शुरू करते हैं तो अंदर भी मन के अंदर कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं। अगर सप्रेस करते हैं तो क्या होगा, ऊपर से मुख से हम कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन मन में बहुत नेगेटिव थॉट्स चलते रहेंगे कि उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वैसा नहीं बोलना चाहिए था, ये है वो है, बहुत फ्रस्ट्रेशन अंदर मन में बढ़ जाता है। जब मन में फ्रस्ट्रेशन है लेकिन मुख से हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसको सहनशीलता हम नहीं कहते हैं, इसको सेपरेशन कहते हैं। तो इसलिए जब सेपरेशन है तो कभी ना कभी वो जो अंदर नेगेटिविटी है फ्रस्ट्रेशन है वो फट के बाहर आएगा, ब्लास्ट होकर के बाहर आएगा। जैसे प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ते 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 वो क्या होगा, अगर सेफ्टी वाल्व हम नहीं निकालते हैं तो वो ब्लास्ट हो जाता है। ऐसे ही हमारे अंदर भी अगर नेगेटिविटी इतना चल रहा है, फ्रस्ट्रेशन इतना चल रहा है लेकिन हम उसको बाहर नहीं निकाल रहे हैं तो कभी ना कभी हमारा भी ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट हो जाना माना कोई छोटी चीज हुई, बच्चे ने कुछ ऐसा किया तो दो खींच के थप्पड़ मार दिया, एक्चुअली वो जो मैंने गुस्सा दिखाया वो बच्चे की एक छोटी सी गलती के कारण से नहीं लेकिन जो पाइलअप हो गया है तो जो फ्रस्ट्रेशन है तो उसके कारण से मैं ब्लास्ट हो गई, आउटकम ये हो गया, गुस्सा आ गया। तो इसीलिए बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। तो इसीलिए सही मायने में सहनशीलता माना अंदर भी पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना, और उस जब भी कोई व्यक्ति गुस्सा करता है उसके प्रति एक दया भाव या करुणा भाव या मर्सी रखना जरूरी है, क्योंकि बेचारा वो अपने काबू में नहीं है। तो वो कंपैशन जब हम रखते हैं तो उसके प्रति हमारा पॉजिटिव हो सकता है। और दूसरी बात ये है, सचमुच अगर मुझे बुरा लगा है जो उसने व्यक्ति ने कुछ अगर बोला है और मुझे सचमुच बुरा लगा है, सही टाइम और प्लेस को देखते हुए हमें उसको क्लारिफाई करने की जरूरत है। ये जरूरी नहीं है कि हर बार हम सहन करें और वो गलत बोलता जाए, गलत करते जाए और मैं उसको चुपचाप सहन करूं, ये जरूरी नहीं है। वो समय को देख, अगर उसका मूड ठीक है, अगर उस समय को देख करके अगर मैं उसको क्लारिफाई करूं कि आपने जो बोला, आपने जो किया तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्लैरिफिकेशन भी करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है कि कुछ बोल के चले जाते हैं और उनको पता भी नहीं चला होता है कि मुझे कुछ बुरा लगा है, तो इसीलिए क्लैरिफाई भी करना जरूरी है। लेकिन समय को देखते हुए हम शांति से ये बताएं कि हाँ उस समय ना बोले, क्योंकि उस समय वो भी गुस्से में है, अगर हम क्लैरिफाई करने जाए तो और भी मामला बिगड़ सकता है। लेकिन बाद में बिठा करके प्यार से शांति से समझाएंगे तो जरूर समझेंगे। अगर इन केस दो तीन बार समझाने के बाद भी वो व्यक्ति बदलता नहीं है तो फिर हम लोग फिर माइंड इतना पावरफुल बनाए और पॉजिटिव वाइब्रेशंस उस व्यक्ति को देते जाए, शांति के वाइब्रेशंस, प्यार के वाइब्रेशंस हम देते जाए। तो और कई लोग ये भी कहते हैं कि दीदी हमने ना बहुत मेहनत किया है और उनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी बहुत देने की कोशिश की और काफी मैंने प्रैक्टिस भी किया लेकिन परिवर्तन तो दिखाई नहीं देता है उसके व्यक्ति के अंदर। तो यहाँ हम कहीं ना कहीं गलती कर लेते हैं। तो कहीं मूड अच्छा रहा तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस इतना, प्यार के वाइब्रेशंस, शांति के वाइब्रेशंस इतने अच्छे भेजते हैं, लेकिन मूड खराब हुआ फिर से नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसल हो जाने के कारण से जिस रीति से दिस तेजी से दिस पावर से वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस काम करना चाहिए वो नहीं कर पाता है। तो इसे लगातार लगातार पॉजिटिव हम करते रहेंगे पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजते रहेंगे तो ये जरूर परिवर्तन हो जाना है. क्यों? क्योंकि पॉजिटिविटी इज मच 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 मोर पावरफुल देन नेगेटिविटी. इस पर अगर मेरा विश्वास है तो जरूर वो काम करता है. लेकिन हमारे अंदर जब पेशेंस की कमी हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है. तो इसलिए पॉजिटिविटी के साथ साथ पेशेंस को भी रखना बहुत जरूरी है.
थैंक यू सो मच सुमन दीदी, आपने ये बात कही कि वो चीज लगातार करते हुए रहनी है. ऐसा नहीं कि एक बार किया और छोड़ दे, और एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव करने से कैंसिल आउट हो जाता है. तो एक कॉन्शियस एफर्ट रखना है कि हाँ हम पॉजिटिव अंदर से बने रहें और एफर्ट्स हम डालते रहें. अगला प्रश्न है, उर्मिला कुमारी जी हमारे साथ हैं और वो पूछते हैं, ओम शांति, मुझे मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है बचपन से और इसको लेकर मैं बहुत बार डिप्रेशन में भी आ जाती हूँ. मैं पिछले 13 साल से साइकेट्रिस्ट के द्वारा बताई गई दवाई भी ले रही हूँ. अभी मैं ज्ञान में भी चलती हूँ, योग भी करती हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा मन स्वस्थ नहीं रहता. दिन में अनेकों बार मूड स्विंग होता है, कृपया मार्गदर्शन करें, ऐसा कहते हैं उर्मिला.
आजकल डिप्रेशन और मूड स्विंग्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिखाई देने लगा है. कोई साइकेट्रिस्ट के पास भी जाते हैं तो ठीक है, अगर मेडिकेशन लेने के जो नौबत आए तो जरूर लेना चाहिए. लेकिन अगर वो उस तक नहीं पहुंचे हैं तो लेने की जरूरत नहीं है. लेकिन अपने ऊपर भी अपने ऊपर लगातार काम करने की जरूरत है. जब भी ऐसे मूड स्विंग हुआ या जब भी ऐसे डिप्रेशन फील हुआ तो ये अपने आप को देखने की जरूरत है कि किस कारण से हो रहा है. कि कोई भी ऐसे लाइफ के इंसिडेंट्स के कारण से मेरा मूड लो हो रहा है या फिर कुछ ऐसे बिहेवियर व्यक्ति के बिहेवियर के कारण से हो रहा है, तो वो कारण हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है. जब कारण हम आइडेंटिफाई करते हैं तो उसका निवारण करना बहुत इजी हो जाता है. कई बार अभी के कारण नजर नहीं आते हैं, कई बार हम लोग कहते हैं कि पिछले जन्मों का इम्पैक्ट अभी रहता है. तो इसीलिए हमें क्या करना है कि लगातार देने की जो आदत है वो डाल देनी चाहिए. मेडिटेशन में हम ये कहते हैं कि मेडिटेशन में जब हम बैठते हैं तो परमात्मा से वो शक्ति लेकर के दुनिया को देना शुरू करिए. दुनिया को जब हम देना शुरू करेंगे तो एनर्जी फ्लो होता है. जैसे फॉर एग्जांपल हम शांति की शक्ति, परमात्मा शांति के सागर है, तो मैं शांति की शक्ति को लेकर के मैं सारी दुनिया को शांति की शक्ति दे रही हूँ. मेडिटेशन करते समय केवल अपने लिए मेडिटेशन करते हैं तो वो इतना काम नहीं करता, लेकिन जब हम दुनिया के लिए करते हैं, एक वाइब्रेशन स्प्रेड आउट करने के लिए हम करते हैं तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है. और इस प्रोसेस में अपने अंदर जो डिप्रेशन है या नेगेटिविटी है जो भी है वो भी पावरफुल रीति से वो वॉश आउट हो जाता है. तो ये एक प्रैक्टिस है. और दूसरे प्रैक्टिस है फॉरगिवनेस. तो ये डिप्रेशन क्यों आता है, तो कहीं ना कहीं हमने किसी ना किसी को दुख दिया होगा, उसका कर्म का रिटर्न मुझे मिल रहा है. तो कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता है, राइट. तो इसीलिए एक है फॉरगिवनेस मांगना, क्षमा मांगना. मुझे पता नहीं है किसको मैंने दुख दिया है, लेकिन परमात्मा को याद करते हुए मैं ये संकल्प करूं, जाने अनजाने में मैंने किसी को भी दुख दिया हो, प्लीज मुझे माफ करिए. ये जब मैं फॉरगिवनेस मांगती हूं तो वो लाइटनेस महसूस करना शुरू हो जाता है. और तीसरी बात ये है, मैं फॉरगिव करती जाऊं. मेरे साथ किसी ने भी अगर गलत व्यवहार किया है तो उसको भी मैं माफ करूं, क्योंकि वो जो रिवेंज है, हेट्रेडनेस है, जो भी नेगेटिव फीलिंग्स है, अगर मैं होल्ड ऑन करती हूं अपने इमोशंस में, अपने मन में, तो वो भी डिप्रेशन का कारण बन जाता है. तो इसलिए मैं फॉरगिव करना सीखे. अगर क्षमा नहीं कर पाते तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं. जैसे हम जब चल रहे होते हैं तो अगर एक पैर अगर कहीं फंसा हुआ है तो वहां कितना भी हम एनर्जी लगाए आगे बढ़ने के लिए, हम आगे नहीं बढ़ पाते. तो हमारे वो पैर को निकालना पड़ता है, फ्री करना पड़ता है. अगर मैंने फॉरगिव नहीं किया है, जाने अनजाने में मेरी बुद्धि पास्ट में जा रहा है, इसने ऐसा किया था, वैसा नहीं करना चाहिए था, मेरी जिंदगी तो इतना खराब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. तो इसलिए माफ करना सीखे, ब्लेम ना करे, माफ जो भी हुआ है ठीक है, माफ करना शुरू करते हैं तो अनेक बातों से हम फ्री होना शुरू करते हैं, होते हैं.
जी, जैसे आप ये बातें बता रहे थे उसी टाइम पे एक और हमारे दोस्त हैं नव्या, जो फेसबुक से हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने भी इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा. और मैं समझता हूँ आपने बहुत ही अच्छी चीज एक स्पिरिचुअल साइड बताया कि भाई हम मेंटल इलनेसेस को डील करते हैं, उसके लिए प्रोफेशनल हेल्प लेना जरूरी है. आपने ये कहा कि भाई अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसे हालत पे हैं तो आपको बिल्कुल प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहिए, साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से आपको लेना चाहिए. आपने वो भी बताया और आपने ये भी कहा कि कुछ चीजें स्पिरिचुअली हमें प्रैक्टिस में लाई जा सकती हैं, कि हम ये गिविंग की हैबिट बनाएं, पॉजिटिविटी को स्प्रेड आउट करने की आदत बनाएं, तो ये देने वाली चीजें हम करने लगेंगे तो फिर बहुत अच्छा हो सकता है. मैं समझता हूँ एक और प्रश्न है जो हमारे दोस्त हमारे साथ लाइव हैं, कृष्ण प्रिया तोमर नाम है इनका और ये YouTube से हमारे साथ जुड़े हैं. वो पूछते हैं, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी कोई मेरी ही फैमिली का कोई मेंबर मेरी माँ के बारे में कुछ गलत या बुरा बोलता है तो मेरा उस फैमिली मेंबर के बारे में नेचुरली थोड़ा मनमुटाव हो जाता है, खटास आ जाती है कि भाई ये मेरे मदर को ब्लेम कर रहे हैं. तो ये पूछते हैं कि उस टाइम पे मैं क्या जवाब दूं, क्या मेरा जवाब होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है कि हम एंगर के साथ रिएक्ट करते हैं या कुछ हम उनके लिए भी बुरा बोल देते हैं. बट अप्रोप्रिएटली क्या बोलना चाहिए जब सामने वाला किसी की बुराई कर रहा है, स्पेशली आपके अपने ही फैमिली मेंबर या अपने माँ के बारे में कह रहा है.
बहुत ही अच्छा प्रश्न है कृष्ण प्रिया जी. मुझे लगता है कि घर घर की कहानी है ये, कहीं ना कहीं किसी ना किसी की बुराई कर रहा है, किसी ना किसी किसी का खिंचाई खींच रहा है. तो इसको भी हम पॉजिटिव अप्रोच से इसको डील करें, क्योंकि भले वो व्यक्ति नेगेटिव है, नेगेटिव व्यक्ति को हम नेगेटिविटी से डील नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए पॉजिटिविटी से ही हमें उसके साथ डील करने की जरूरत है. भले वो क्रोध कर रहा है, वो गुस्सा कर रहा है, मैं भी उन रिटर्न उसके रिटर्न में गुस्सा करूं. ऑफ कोर्स वो जो कह रहा है वो रॉन्ग है, मेरी माँ के लिए वो कह रहा है तो बिल्कुल रॉन्ग है. भले उनकी गलती है नहीं है जो वो सेकेंडरी है, लेकिन जो कह रहे हैं वो तो रॉन्ग है, मानते हैं. लेकिन वो अगर गुस्से से कह रहे हैं तो इसका मतलब अगर मैं भी गुस्से से अगर कहूं तो जरूरी नहीं है कि वो एक्सेप्ट करे. तो इसीलिए उसको शांति से समझाने की जरूरत है इसका बैकग्राउंड क्या है. माँ अगर कुछ पर्टिकुलर वे में बिहेव कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, किस कारण से, क्योंकि जो सुपरफिशियली अभी प्रेजेंट में जो दिखाई दे रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो क्योंकि उनके जीवन में जिन्होंने उन्होंने जो सहन किया है, जो उन्होंने जिंदगी में देखा है, उसके कारण से वो अभी का बिहेवियर है. तो इसीलिए उसको समझते हुए हमें उसके साथ डील करने की जरूरत है. और दूसरी बात है, रेस्पेक्ट तो रखना ही चाहिए अपने बड़ों के प्रति. भले वो कैसे भी बिहेव करे, लेकिन उन्होंने जो किया है मेरे लिए, बड़ा किया है, पाला पोसा जो भी है उन्होंने किया है, तो उसके लिए हमें वो ग्रैटिट्यूड जरूर रखना चाहिए. भले अभी बिहेवियर कैसा भी है, लेकिन अगर वो नहीं होते तो हम अनाथ होते, राइट. इस दुनिया में पता नहीं कहाँ होते, क्या करते, वो नहीं होता. तो इसलिए एटलीस्ट हमें शेल्टर दिया, खाना दिया, जो भी मुझे जिंदगी में आगे बढ़ाया उनको, उसके कारण से ही सब कुछ हुआ है. तो इसीलिए दिल के अंदर वो ग्रैटिट्यूड जरूर होना चाहिए, क्योंकि ग्रैटिट्यूड के बिना हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते. और लोग ये भी कहते हैं कि माँ का आशीर्वाद जरूर होना चाहिए. माँ के ऑफकोर्स सभी की दुआएं तो ब्लेसिंग्स तो चाहिए ही, लेकिन खास करके माँ का आशीर्वाद ब्लेसिंग्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने जो सहा है हमें पालने के लिए, पोसने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए, वो एक बहुत बड़ा योगदान है अपने लाइफ में। तो इसीलिए कुछ भी ना हो लेकिन एटलीस्ट ग्रैटिट्यूड होना बहुत जरूरी है। जब हम ये चीजें समझाएंगे उनको प्यार से बिठा करके, वो शायद समझ जाएंगे, क्योंकि जाने अनजाने में वो लोग प्रेजेंट को देख करके वो नेगेटिव बिहेवियर उनके अंदर या फिर जो नेगेटिव कमेंट्स है अपने पेरेंट्स को लेकर के या माँ को लेकर के कमेंट्स है वो आ रहा है, लेकिन उनको याद दिलाने की जरूरत है उनके कॉन्ट्रीब्यूशन अपने लाइफ में कितना बड़ा योगदान उन्होंने दिया है, तो वो याद दिलाने की जरूरत है और हमेशा ग्रैटिट्यूड रखने की जरूरत है उनके प्रति।
आपने बहुत ही अच्छी बात कही है ग्रैटिट्यूड वाली, और ये होता है कि हमारे अपने ही प्रियजनों के, स्पेशली हमारे मदर्स के लिए कोई कुछ कहता है तो हम हर्ट फील होते हैं, बट उस टाइम पे उसे सही तरीके से डील करने की जरूरत है। वो ग्रैटिट्यूड आप एक्सप्रेस करें तो शायद उनके नेगेटिव इमोशंस को भी कंट्रोल किया जा सकता है, लोग समझ सकते हैं कि आप अपने माँ के प्रति और आप कैसा महसूस करते हैं। मुझे वो बात लाइन याद आई, ये जो माँ की मोहब्बत होती है ये सब मोहब्बतों की माँ होती है। तो जो हम लव एक्सपीरियंस कर रहे हैं हमारे लाइफ में वो
निस्वार्थ होता है उनकी मोहब्बत
जी, तो वहां से वो सोर्स निकला है, तो वो आप एक्सप्रेस करेंगे तो शायद वो चीज हो सकती है। हमारे एक और दोस्त हैं यूट्यूब से जुड़े हैं, राजेंद्र कुमार, वो कहते हैं कभी कभी अपनी गलती भी नहीं रहती तो मेजॉरिटी के साथ हमें सुनना पड़ता है, वैसी स्थिति में क्या करना चाहिए?
ये टेस्ट पेपर है आपके लिए क्योंकि वो स्पिरिचुअल व्यक्ति है या नहीं है, हर व्यक्ति राजेंद्र जी ये सामना करता ही है, लेकिन ये हमारे लिए एक टेस्ट पेपर है। वैसे कहते हैं जो बच्चे एक कक्षा को एग्जाम्स देते हैं तो नेक्स्ट कक्षा में वो जाते हैं, एग्जाम्स को पास किए बिना वो नेक्स्ट क्लास में नहीं जा सकते हैं। जिंदगी में भी ऐसा है, कोई अनेक प्रकार की जो एग्जाम्स या टेस्ट पेपर्स आते हैं, ये एक अंतर है। स्कूल और कॉलेजेस में एग्जाम के डेट्स जो है वो फिक्स होता है, लेकिन जिंदगी के जो इसमें कोई टेस्ट पेपर का डेट और टाइम फिक्स नहीं होता है, इसलिए अचानक ही ऐसा नेगेटिव हमें सामना करना पड़ता है या बिना गलती के ही बहुत कुछ लोग बोल, हम जो करते हैं तो अच्छे राइट एटीट्यूड से हम करना चाहते हैं या फिर पॉजिटिव एटीट्यूड से हम करते हैं, किसी की भलाई हो जाए उसके लिए हम करते हैं, हमारे अंदर बिल्कुल पॉजिटिव इंटेंशंस है कोई भी कर्म करने के पीछे, लेकिन अगर वो दूसरे लोग उस कर्म को देख करके ईर्ष्यावश, द्वेषवश, कुछ नेगेटिव इमोशन वश वो लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, तो उसको समझने की जरूरत है। मैं हमेशा ये सोचती हूँ अगर मेरा इंटेंशन राइट है, मैं कुछ कर्म कर रही हूँ और लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, तो अपने आप को चेक कर रही हूँ, मैं राइट कर रही हूँ, मेरा इंटेंशंस राइट है, क्योंकि मैं अपने लिए और परमात्मा के लिए अकाउंटेबल हूँ, किसी और के लिए अकाउंटेबल नहीं हूँ। कोई अच्छा करे तो भी कमेंट करेंगे, कोई बुरा करेंगे तो भी कमेंट करेंगे, उनको हम बंद नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने एक लॉन्ड्री ये धोबी और उसके गधे की कहानी आपने सुनी होगी, वो धोबी गधे को लेकर के जा रहा था, धोबी और धोबी का पोता था, तो वो तीनों जा रहे थे और किसने रास्ते चलते किसने कमेंट किया, देखो कितना ये गधे को ऐसे ही लेके जा रहा है, किसी को ना कोई एक तो बिठाना चाहिए ना इसके ऊपर, तो ठीक है अपने पोते को बिठा दिया उसके ऊपर और चलता गया। और फिर नेक्स्ट कोई आया तो फिर उसने कहा कि देखो बच्चे को बिठा दिया, बच्चे देखो बच्चे तो चल सकता है, बूढ़ा चल रहा है तो बूढ़े को बैठना चाहिए, तो बच्चे को उतार करके बूढ़े बैठ गए। तो फिर आगे चल करके फिर और किसी और ने कुछ कमेंट किया, तो ठीक है दोनों को बिठा दिया, वो धोबी भी बैठ गया और पोते को भी बिठा दिया। फिर आगे चले तो और कमेंट किया किसी ने, बेचारा गधा कि वो देखो दोनों बैठ गए उसके ऊपर। फिर उसने कहा ठीक है, दोनों गधे को सिर पे उठा के चलना शुरू किया। माना कुछ भी हम करें लोग तो बोलेंगे ही, राइट। तो इसीलिए हमें आत्मसाक्षी करना है कि मैं क्या राइट कर रही हूं, मेरा इंटेंशन राइट है, पॉजिटिव है, तो ठीक है, तो करते रहना है, लेकिन उसको हमें छोड़ना नहीं है। कई बार क्या होता है, हम राइट कर रहे होते हैं, अच्छा कर रहे होते हैं, लोगों के नेगेटिव कमेंट्स को सुन करके हम हिम्मत हार लेते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं करना है। हिम्मत नहीं हारना है, परमात्मा के साथ का अनुभव करते हुए जो हम राइट कर्म कर रहे हैं तो वो करते चलना है।
जी थैंक यू सो मच। मैं समझता हूँ वो एग्जाम्पल बहुत ही इफेक्टिव है ये सोचने के लिए कि हमें अपने बारे में सोचना है कि क्या मैं कर रहा हूँ वो सही या नहीं, अपने कॉन्शियंस के लिए वो क्लियर रहना जरूरी है और ईश्वर की मदद से ईश्वर की आंखों में सही है या नहीं ये भी देखना चाहिए। तीन प्रश्न है जो तीनों मिलते जुलते हैं, मैं तीनों प्रश्नों को क्लब कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आप में से कुछ दोस्त हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं तो अभी भी सवाल पूछ सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आप YouTube पे, Facebook पे, जहां पर भी देख रहे हैं वहां पर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स टाइप करें और वहां से ये प्रश्न उठाए जाएंगे। अगर आपके कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो प्राइवेट नेचर के हैं, जहां पर आपको लगता है कि ये प्रश्न ऐसा है जहां पर आप अपना नाम नहीं बताना चाहते या अपने नाम को प्राइवेट रखना चाहते हैं, तो ऐसे सवालों को आप ईमेल कर सकते हैं हमें socialmedia@brahmakumaris.com पर, और आपके प्रश्नों को हम लेंगे प्राइवेट रखते हुए, आपका नाम रिवील नहीं किया जाएगा, बट उन प्रश्नों को हम हमारे स्पिरिचुअल एक्सपर्ट से लेंगे जरूर। तो अगला प्रश्न मैं लेना चाहता हूं दीदी, जो तीन लोग हैं जो मिलते जुलते सवाल पूछ रहे हैं। एक तो रजनी जी हैं हमारे साथ जो कहती हैं कि हाउ टू थिंक पॉजिटिव ऑलवेज, हमेशा पॉजिटिव कैसे सोचा जाए। फिर उमेश पाटिया जी हैं जो पूछते हैं कि हाउ टू रिमूव नेगेटिव थॉट्स, और एक और दोस्त हैं जो इससे ही मिलता जुलता सवाल पूछ रहे थे कि हम, हर्षवर्धन जी नाम है इनका, और वो कहते हैं कि नेगेटिविटी दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। तो हर्षवर्धन जी का भी सेम सवाल है और उमेश जी का भी सेम सवाल है और रजनी जी का भी सेम सवाल है।
बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इसके लॉजिक को हमें समझने की जरूरत है। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी किस रूप से काम करता है, एक एग्जांपल अगर मैं बताऊं, अगर रोशनी है, लाइट है, सनलाइट है, तो उसको रोशनी कहा जाता है। जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है वो अंधेरा हो जाता है। तो अगर हम पूछे कि अंधेरे की डेफिनेशन क्या है, अंधेरे की डेफिनेशन इसको क्या, रोशनी का ना होना, एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस, वेरी सिंपल। और दूसरा प्रश्न ये है कि व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है। प्रकाश के लिए वही हम आंसर दे सकते हैं क्या, एब्सेंस ऑफ डार्कनेस। अक्सर करके ये कहते हैं कि एब्सेंस ऑफ डार्कनेस तो नहीं हो सकता, क्योंकि लाइट जो है वो प्रकाश, वो एनर्जी है, सूर्य एक एनर्जी है, लाइट एक एनर्जी है, डार्कनेस कोई एनर्जी नहीं है, एब्सेंस ऑफ एनर्जी इज डार्कनेस। तो ऐसे ही पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी एक एनर्जी है, एब्सेंस ऑफ पॉजिटिविटी इज नेगेटिविटी। तो नेगेटिविटी के अंदर कोई अपना ताकत नहीं है। व्हाट इज नेगेटिविटी इज एब्सेंस ऑफ पॉजिटिविटी। तो जब अपने अंदर, अपने मन के अंदर पॉजिटिविटी नहीं होगा, ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट्स आएंगे। क्यों? क्योंकि मन की एक क्वालिटी है कि लगातार वो थॉट्स क्रिएट करता है। जैसे सागर में लहरें लगातार आते हैं, तो एक के बाद एक आता ही है, वो चाहे पूर्णिमा हो, अमावस हो, कभी टाइड्स बढ़ जाता है, कभी कम होता है। ऐसे ही नेगेटिव थॉट्स जब आते हैं तो थॉट्स का स्पीड बहुत ज्यादा हो जाता है, पॉजिटिव थॉट्स की जो स्पीड है वो कम है। तो लगातार एक के पीछे एक थॉट्स तो आना ही है, क्योंकि ये क्वालिटी है मन का, ठीक है। तो इसको हम चैनलाइज कर सकते हैं, पॉजिटिव थॉट्स करना है या नेगेटिव थॉट्स करना है। पॉजिटिविटी की कमी है तो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव में स्विच हो जाता है। अगर मेरे अंदर शांति की कमी है आत्मा का ओरिजिनल क्वालिटी शांति है, लेकिन शांति की कमी है तो फिर ऑटोमेटिकली मुझे गुस्सा आएगा। गुस्सा अपने आप में कोई ताकत नहीं है। गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि शांति की कमी है। स्नेह की कमी है तो फिर ईर्ष्या, घृणा, हेट्रिडनेस, वो सब कुछ आ जाता है। शक्ति की कमी है तो फिर निशक्तता।
जो बात आपने अभी ये जो बात अभी आप कह रहे थे सुमन दीदी, मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम पॉजिटिव थिंकिंग करना तो चाहें, बट पॉजिटिव बने रहना चाहते हैं, बट उसकी सही समझ नहीं होने के कारण हमें लगता है कि हाँ हम पॉजिटिव बने रहें। बट पॉजिटिविटी होती क्या है? आपने बहुत सुंदर डेफिनेशन दिया कि लाइट का एब्सेंस अंधेरा है, अंधेरा अपने आप में ताकत नहीं है, लाइट एक ताकत है। तो नेगेटिविटी कोई ऐसी चीज नहीं है, आप पॉजिटिव सोचते रहेंगे तो नेगेटिविटी अपने आप चली जाएगी। एक और प्रश्न है, आभा चंद्र हमारे साथ हैं और आभा हमसे प्रश्न पूछती हैं। वो कहती हैं, ओम शांति दीदी जी, आई एम अ बिगिनर एंड आई एम अनेबल टू डू मेडिटेशन। आई वुड लाइक टू नो, इज इट पॉसिबल विथ अफर्मेशंस ड्यूरिंग द होल डे विदाउट मेडिटेशन वी कैन चेंज द सिचुएशन। वो कहते हैं वो नए हैं मेडिटेशन के लिए और वो मेडिटेशन नहीं कर पा रही हैं। तो कहते हैं कि क्या पूरे दिन में हम सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ बिना मेडिटेशन किए हुए सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशंस अगर करते रहें तो भी मतलब परिवर्तन आ सकता है, चेंज हो सकते हैं, पूछते हैं आभा।
हाँ, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, मेडिटेशन और अफर्मेशन। ऑफकोर्स पॉजिटिव अफर्मेशन का इम्पैक्ट, असर जरूर होता है अपने मन के ऊपर, लेकिन इट इज नॉट द सेम एज मेडिटेशन। हाँ, लगातार जैसे भक्ति मार्ग में लगातार मंत्र जाप करते थे तो उसका असर तो जरूर होता है, क्योंकि मन पॉजिटिविटी में इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं एक फोकस्ड है, जिस कारण से नेगेटिव नहीं जा रहा है, उसके कारण से कोई ना कोई ताकत वो बिल्डअप तो होता है, पॉजिटिव एनर्जी तो मन के अंदर बिल्डअप होता है, वो तो करे तो अच्छा है। लेकिन मेडिटेशन, अगर फोकस्ड मेडिटेशन होता है, अगर 5-10 मिनट भी आप पूरी तरह फोकस्ड मेडिटेशन करते हैं, उसका इम्पैक्ट ज्यादा है। तो इसीलिए आप केवल ठीक है शुरुआत में वो करें, वो बुरी बात नहीं है, वो साइड इफेक्ट्स नहीं है और बुरी बात भी नहीं है अफर्मेशंस करना, भले करिए, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। मेडिटेशन के लिए भी प्रयास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेडिटेशन से डायरेक्ट लिंक होता है आत्मा का परमात्मा के साथ। वो एनर्जी जो अनुभव करते हैं हम आत्माएं, तो उस अनुभव के कारण से, अब्सॉर्प्शन के कारण से बहुत जल्दी परिवर्तन नजर आने लगता है। तो इसीलिए दोनों करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अफर्मेशंस भी करिए लेकिन मेडिटेशन करना ना छोड़े। बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल लगता है फोकस करना, लेकिन लगातार धीरे 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 करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि अभ्यास ही नहीं है ना। जब एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो फिर मसल्स कहीं ना कहीं पेन होता है, बेंड प्रॉपरली नहीं होता है, तो लगातार एक्सरसाइज करते हैं तो फिर परफेक्ट पोस्चर आता है। ऐसे ही यहां भी मेडिटेशन करते रहेंगे, डोंट लूज योर पेशेंस, मैं यही कहना चाहती हूँ। कई बार लोग मेडिटेशन करना शुरू करते हैं और लगता है कि चमत्कार दिखना चाहिए या मिराकल हो जाना चाहिए लाइफ में, ऐसे कोई मिराकल जो ये सिद्धि हो जाए, ऐसा मिराकल एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि ये विधि से सिद्धि है, संस्कारों में परिवर्तन, बिहेवियर में परिवर्तन करने की बात है। तो इसीलिए धीरे 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 ये चेंज होगा। अगर मैं 20 साल जंक फूड खाई हूँ, मेरा मोटापा इतना बढ़ गया है, धीरे धीरे वो प्रॉपर हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट में आती हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि हाँ एक मास में मेरा वजन घट जाना चाहिए, मुझे हेल्दी बॉडी मिल जाना चाहिए, ये नहीं हो सकता। अनलेस एंड अंटिल वो शॉर्टकट्स अगर लेते हैं तो, कोई सर्जरी कराए या ऐसा होता है, तो विधि पूर्वक अगर करते हैं तो इट टेक्स टाइम, एवरीथिंग वुड टेक टाइम। तो इसीलिए मेडिटेशन भी जब करते करते रहेंगे, इट ऑल्सो वुड टेक टाइम, लेकिन पेशेंस के साथ साथ लगातार हर रोज एटलीस्ट 20 मिनट्स मैं सजेस्ट करूंगी, एटलीस्ट 20 मिनट्स इन द मॉर्निंग, 20 मिनट्स एट नाइट। तो उठते ही 20 मिनट्स आप मेडिटेशन में बैठे, सोने से पहले 20 मिनट्स करके मेडिटेशन सोए, तो आप देखेंगे बहुत कुछ चेंजेस अपने में आना शुरू होगा।
जी, अगला प्रश्न है हमारे साथ, सचिन जुड़े हैं यूट्यूब से, वो कहते हैं ओम शांति दीदी, मुझे जो कुछ करना है उसके बारे में सोचता रहता हूँ, लेकिन एक्शन लेने का टाइम आता है तो एक्शन नहीं कर पाता हूँ, तो क्या गाइड करेंगे आप सचिन जी को?
क्यों नहीं कर पाते हैं एक्शन, या चेक करने की जरूरत है अपने आप को कि क्या हिम्मत की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, या फिर कुछ उसी टाइम पे लगता है कि नहीं नहीं ये नहीं करना चाहिए, दूसरा करना चाहिए, तो क्या है, कौन सी बात है जो आपको करने नहीं दे रहा है? अक्सर करके देखा जाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होता है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। और कई बार हम सोचते हैं रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट उससे डरते हैं, तो इसीलिए रिस्क लेना हम लेना शुरू करना चाहिए, भले वो कुछ भी हो या ना हो, लेकिन हम कॉन्फिडेंस के साथ हम करना शुरू करते। कई बार ये होता है कि कहीं गलती ना हो जाए, लोग मेरे ऊपर हंसे नहीं, हंसेंगे तो नहीं, तो बहुत सारी बातें आती है जिस कारण से हम वो नहीं कर पाते हैं। तो ठीक है, गलतियां तो करते ही है, बच्चा जब चलना शुरू करते गिरना तो वो ये इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, गिरेंगे नहीं तो बच्चा चलेगा नहीं। जब हम कोई भी व्हीकल ड्राइव करना शुरू कर, साइकिल ये चलाना शुरू किया तो कई बार गिरे, फिर चलाना शुरू किया, या फिर प्रैक्टिस करते रहे तो फिर उसमें माहिर हो गए। तो स्टार्टिंग कुछ भी हम करें गलतियां तो करेंगे ही, गिरेंगे जरूर, ठीक है, गिरने से हमें डरना नहीं है, गलतियों से हमें डरना नहीं है, ठीक है, गलतियों से ही हम सुधरेंगे ना। तो ये इसीलिए कहते हैं जो बल्ब, थॉमस एडिसन ने जब बल्ब इन्वेंट किया, उन्होंने 1000 बार उन्होंने गलती की हर, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, और वो उन्होंने बाद में कहा कि आई नो 1000 बार जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया और फेल हो गया, तो आई नो दीज आर द वेज विच डजंट वर्क, 1000 ways which doesn't work, तो ठीक है 1001 जो ये तरीका है तो वो अपनाना है। तो हर गलती से हम अनुभव पाते हैं, एक्सपीरियंस मिलता है अपने लाइफ में, तो इसीलिए गलतियों से डरना नहीं है, गिरने से डरना नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की जरूरत है। लोग हंसे, हंसने दीजिए, कोई बात नहीं।
जी, अगला प्रश्न है, ये भी 3-4 लोगों के प्रश्न है जिनको मैं मिला के पूछना चाहता हूँ। सुमन दीदी, विकास जी हमारे साथ जुड़े हैं फेसबुक से, वो कहते हैं असफलता का डर या सफलता की शंका कैसे दूर हो? जैसे आप अभी बात कह रहे थे, लोगों को असफलता का डर होता है, और कभी डर नहीं होता तो डाउट होता है कि हाँ होगा या नहीं होगा। इससे मिलता जुलता एक और दोस्त का सवाल है, वो भी डर से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इसे जोड़ रहा हूँ। मनोज कुमार जी हमारे साथ फेसबुक जुड़े हैं, वो कहते हैं कोरोना काल में अपना और अपने परिवार का ध्यान कैसे रखना चाहिए, कोरोना का डर बना रहता है, कैसे पॉजिटिव रहें, ये पूछते हैं। तो ये एक ऐसा चीज है जो बहुत सारे लोगों को अभी फिल वक्त ये देखने में मिल रहा है कि लोग फियर एक ऐसा कॉन्स्टेंट चीज है, चलो असफलता का फियर होना ठीक है, बट यहाँ पर एक बीमारी का भी फियर है, तो इस फियर के बारे में आप थोड़ा गाइड करें।
हाँ, ये दोनों चीजें अलग अलग है, असफलता का डर या फिर उसमें निश्चय नहीं है तो वो एक प्रकार का डर है, और कोरोना का ये जो है वो अलग प्रकार का डर है, लेकिन दोनों सिचुएशन में हमें डर क्या है तो वो समझना है। डर सिंपल रूप में अगर ब्रेकडाउन करें तो सिंपल रूप से अगर हम कहते हैं फियर इज लाइक फियर ऑफ लूजिंग समथिंग। डर क्यों आता है कि फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, अगर कोई असफलता होता है तो फिर क्यों, क्या डर है, शायद लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, या फिर मेरा जो पोजीशन है, प्रेस्टीज है, वो दांव पे लग जाएगा, या फिर लोगों का इंप्रेशन, जो मेरा जो इंप्रेशन है लोगों के ऊपर वो कम हो जाएगा, तो किसी ना किसी प्रकार फियर ऑफ लूजिंग समथिंग। तो इसके कारण से वो डर बना रहता है। तो इसीलिए वो हम छोड़ दे, क्योंकि कोई भी चीज अपने लाइफ में शाश्वत नहीं है। एक ही चीज शाश्वत है, वो हमारा लाइफ फोर्स। अगर मैं जिंदा हूं, सब कुछ मैं प्राप्त कर सकती हूँ। अगर कुछ भी चला जाए, मैं दोबारा उसको कमा सकती हूँ। तो इसके डर के कारण से मैं कुछ करूं ही नहीं तो फिर मैं कहीं भी नहीं पहुंच पाती हूँ। तो इसीलिए हिम्मत बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी क्वालिटी है। हर बात में हमें हिम्मत रखने की जरूरत है। और ट्राई समथिंग न्यू चैलेंजेस, गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आप ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो कंफर्ट जोन से निकल करके आप नया कुछ करेंगे, वहां असफलता भी मिलेगी, मिल सकता है सफल भी हो जाए, तो बहुत बड़ी चीज है ना। तो इसीलिए व्हाई डू यू थिंक केवल असफलता के बारे में क्यों सोचते हो आप? सफल भी हो जाते हैं तो फिर बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए हिम्मत कभी नहीं हारना है, करते चलना है। और यह शंका जो है, दूसरी बात यह थी कि सफलता में ठीक है, अगर सफलता भी नहीं हो आया, या इफ आई डोंट बिकम सक्सेसफुल आल्सो व्हाट हैपेंस, कुछ हम लूज तो नहीं करेंगे, ट्राई करने में क्या जाता है। तो इसीलिए हमें नया ट्राई करने में कभी छोड़ना नहीं है, और जो कैपेसिटी है उसको हमें एक्सपैंड करते जाना है। और दूसरी बात यह है, कोरोना काल में जो भय है, भय के कारण से हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, कहीं मेरे को भी ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कहीं कोरोना हो ना हो जाए, फैमिली मेंबर्स को ये ना हो जाए। हर रोज यही विचार अगर हम करते रहेंगे, वेर एवर वॉट एवर आई थिंक आई गिव एनर्जी टू दैट। तो इसीलिए इंग्लिश में एक कहावत है, वेयर माई अटेंशन गोज देयर माई एनर्जी फ्लोज, वेयर माई एनर्जी फ्लोज देयर माई लाइफ ग्रोज। अगर भय के कारण से मैं ये हमेशा ये नेगेटिव सोच रही हूं कि कहीं मुझे कोरोना होना हो जाए, कोरोना ना हो जाए, कोरोना होना हो जाए, ये थॉट जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव ही कहा जाएगा, क्योंकि कोरोना के लिए मैं एनर्जी दे रही हूं, कहीं कोरोना ना हो जाए, कोरोना ना हो जाए। तो एनर्जी जब दे रही हूं तो जरूर कभी ना कभी मुझे कोरोना जरूर हो जाएगा। तो ये माइंड के जिस रीति से काम करते, ये टेक्निक है उसका। जैसे अगर आपको कहे कि आप ना अगले 30 सेकेंड के लिए बंदर के बारे में नहीं सोचिए, तो जरूर आप बंदर के बारे में सोचेंगे। भले आप 4 दिन से, 1 हफ्ते से, 2 साल से आप बंदर के बारे में सोचे ही नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही मैंने कहा, आप 30 सेकेंड के लिए बंदर के बारे में नहीं सोचिए, आप बंदर के बारे में ही सोचेंगे। क्योंकि वो शब्द सुनते ही वो माइंड की एनर्जी जो है वहां चला गया। तो व्हाट इज नेगेटिव? कोई भी सेंटेंस में अगर नेगेटिव वर्ड है, जैसे नो, नहीं, ना, ये सब शब्द अगर है वो नेगेटिव में गिना जाता है। अगर ये कहे कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, इसमें नेगेटिव वर्ड है, तो ये नेगेटिव हो गया। तो इसलिए उसके बजाय मैं ये सोचूं कि मैं सुरक्षित हूं। कोरोना शब्द ही ना सोचना, केवल ये सोचना है कि मैं सुरक्षित हूं, मैं सेफ हूं, मैं हेल्दी हूं। हेल्थ के बारे में सोचते रहेंगे, सेफ्टी के बारे में सोचते रहेंगे, वो ओरा हमारे चारों तरफ वो क्रिएट हो जाता है सेफ्टी का। ऑफ कोर्स फिजिकली भी जो सेफ्टी मेजर्स हमें लेना है वो जरूर लेना है, लेकिन साथ साथ माइंड में भी वो पावरफुल ओरा क्रिएट करना है कि मैं सेफ हूं, हेल्दी हूं। तो ये मैं प्रैक्टिस करते जाएंगे तो जरूर उसका इम्पैक्ट, उसका इन्फ्लुएंस, उसका इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं लगता। भले पड़ोसी में वो किसी को कोरोना हो गया, लेकिन मैं पॉजिटिव अप्रोच रख रही हूँ, वो सेफ्टी का जो ये है छत्र है या फिर ओरा है, मैं वो क्रिएट कर रही हूँ, तो वो जरूर अपने आप को हम सेफ रख सकते हैं।
बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी, कि ये फियर जो है दोनों अलग अलग चीजों से रिलेटेड था, और दोनों को आपने अलग अलग करके समझाया कि ऐसे टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। और मैं समझता हूँ हमारे दोस्त भी इस चीज को समझ पाएंगे कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो तो इस चीज को समझने की हमें आवश्यकता है। और अभी हमारे पास ज्यादा समय नहीं है दोस्तों और सवाल लेने के लिए, बट कुछ दोस्तों ने मिलती जुलती चीजें पूछी हैं, तो मैं मेडिटेशन से रिलेटेड ही चीजें हैं तो मैं उन चीजों को जरूर लेना चाहता हूँ। आप अभी सुमन दीदी बता रहे थे कि ये जो कोरोना का टाइम है, इस टाइम पर हमें पॉजिटिव बने रहने की जरूरत है कि हम प्रोटेक्टेड हैं, हम सेफ हैं, ये सोचने की आवश्यकता है। तो बहुत सारे दोस्त कुछ दिनों से मेडिटेशन कर रहे हैं। हमारे एक दोस्त हैं जिनेंद्र वर्मा, वो कोरोना में कैसे वाइब्रेशंस दें पेशेंट्स को ये पूछते हैं। मैं सोचता हूँ इसका एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन अभी हम कर सकते हैं क्योंकि अभी हम मेडिटेशन करेंगे 5 मिनट में। और कुछ दोस्तों ने ये भी चीज कहा है कि निकिता जी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, वो कहते हैं कि उनके फादर इन लॉ की डेथ हुई है कोरोना से और वो किसी और स्टेट में है और वो वहां पर फिजिकली नहीं पहुंच पाएंगे। वो कह रहे हैं कि ऐसे में वो क्या कर सकते हैं वाइब्रेशन से पहुंचने के बारे में, गुड विशेस देने के बारे में भी आप कह सकते हैं। और नीता जी हमारे साथ हैं, वो कहते हैं कि उनके हस्बैंड डॉक्टर हैं और नेचुरली डॉक्टर हैं तो वो ट्रीट करते हैं, तो उनने ये भी बात कही कि वो रोज ध्यान करती हैं कि उनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिले। तो इन सब चीजों के ऊपर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आगे हमें गाइड करें मेडिटेशन में ताकि लोग इस चीज को सीख सकें। बहुत सारे दोस्तों ने प्रोग्राम को अप्रिशिएट किया है, आपके आंसर्स को अप्रिशिएट किया है, आपने बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें बताई हैं, इस चीजों के बारे में लोगों ने बताया है। तो उन सारे कमेंट्स को हम यहाँ स्क्रीन पर देख रहे थे जब आप जवाब दे रहे थे। तो थैंक यू सो मच सुमन दीदी जी का कि आप हमारे साथ जुड़े और हमारे उत्तर दिया आपने, और हमारे दोस्तों का भी धन्यवाद कहूंगा कि वो हमारे साथ आए और इतने सारे सवाल पूछे। मैं सारे सवाल नहीं इंक्लूड कर पाया हूँ आज भी, हर दिन ऐसा होता है, मैं माफी चाहूंगा और कल कुछ सवालों को आज से कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू नंदलेस आप सभी दोस्तों का इतने सारे प्रश्नों को पूछने के लिए, और सुमन दीदी का आप सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ और स्टे पॉजिटिव। हमेशा ये नहीं समझना कि मैं अकेली हूं या अकेला हूं, लेकिन परमात्मा साथ है, ये हमेशा अनुभव करते हुए अपने आप को सेफ महसूस करिए और पावरफुल महसूस करिए।
दीदी अब मैं आपसे
थोड़ी देर के लिए
जी, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप 3-4 मिनट के लिए हम सबको मेडिटेशन में गाइड करें। आप ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय से जुड़े हैं तो नेचुरली पॉजिटिव प्लेस से भी हम जुड़ेंगे आपके साथ, और आप एक अकॉम्प्लिश्ड मेडिटेटर हैं तो आपके साथ ये मेडिटेशन करने का भी अच्छा सौभाग्य है कि हम सभी भी आपके साथ मेडिटेशन कर पाएंगे।
ओम शांति। अपने आप को विजुलाइज करें, एक चमकता हुआ अजब सितारा भ्रुकुटी के बीच में, लाइफ फोर्स, लिविंग एंटिटी, जो इस शरीर को लाइफ देती है, वो मैं आत्मा हूं। मुझ आत्मा के अंदर सभी पॉजिटिव एनर्जीज हैं। मेरा निजी गुण शांति है। शक्ति है। और मैं आत्मा उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान के पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते करने के साथ आप विजुलाइज भी करते जाएं, पिक्चराइजेशन भी करें कि सचमुच मुझ आत्मा के बिल्कुल ऊपर मैं महसूस कर रही हूं परमात्मा की शक्ति, शक्ति के प्रकंपन, शक्तियों की किरणें परमात्मा से निकलकर मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मैं आत्मा उन शक्तियों के किरणों को अब्सॉर्ब कर रही हूं। अब्सॉर्ब करते हुए सारी दुनिया को पावरफुल किरणों को स्प्रेड कर रही हूं, फैला रही हूं। निरंतर परमात्मा से शक्तियों के किरणों को ले रही हूं और संसार में फैला रही हूं, पेशेंस में फैला रही हूं ताकि वो जो तकलीफ है वो कम महसूस करे, हील करते जाएं। अपने आप को हमेशा परमात्मा के साथ कंबाइंड महसूस करें, मेरा साथी भगवान तो क्या करेगा आंधी और तूफान, इस विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ पॉजिटिविटी को मेंटेन करते रहें, पावर को महसूस करते रहेंगे और वातावरण में इन शक्तियों के प्रकंपनों को फैलाते रहेंगे। ओम शांति शांति।